तफसीर देखते हैं आयत नंबर 130 से। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व मन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सहु। और दीने इब्राहीम से कौन बेरगबती करेगा सिवाय उस शख्स के जिसने अपने नफ्स को बेवकूफ़ बना लिया। इतनी लंबी बात है। अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का मियार बता दिया, और वो क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों से जो भी बेरगबत है, जिसका लाइफस्टाइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाइफस्टाइल से नहीं मिलता, जिसका जीना मरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जीने मरने से नहीं मिलता, जिसकी ज़िंदगी में क़ुरबानियाँ और हिजरतें नहीं हैं, जो सिर्फ़ इस दुनिया के गमों में जीता है, तो समझ लीजिए कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों से बेरगबती करता है। और लोग ऐसे शख्स को मॉडर्न कहें, लोग ऐसे शख्स को अप टू डेटेड कहें, लोग ऐसे शख्स को चाहे दुनिया में कितना ज़्यादा कामयाब कहें, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ला मन सफीह नफ्सा, ये शख्स तो बेवकूफ़ है। ज़रा इस कमेंट के ऊपर गौर करें, और शुक्र है अल्लाह का कि ये कमेंट कुरान पाक में आया है, मेरी ज़ुबान से नहीं आप सुन रहे, सिर्फ मैं मैसेज को कन्वे कर रही हूँ। असल पैगाम आपके सामने अल्लाह के रब का है कि अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का फ़र्क देखना चाहते हो तो वो फ़र्क तुम्हें यहाँ दिखेगा कि जिसकी ज़िंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों वाली होगी वो अक्लमंद है, वो कामयाब है, और इसके बरक्स वाले का मामला दूसरी तरफ पलटता है। खैर, इसके बाद क्या हुआ, वो खुद कौन थे? वलकद इस्तफई ना हुफ़ दुनिया, और अलबत्ता बेशक हमने उसको चुना था दुनिया में। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में बेशक वो नेक लोगों में से होगा। यानी लोग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को बेवकूफ़ी समझ के छोड़ रहे हैं, लेकिन इब्राहीम कौन थे? इमामुल अंबिया, दुनिया के भी कामयाब और आखरत के भी कामयाब। और ये वो थे कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में चुन लिया था। ये सब बातें किससे कही जा रही हैं और क्यों कही जा रही हैं? तो अगर आप देखें तो पीछे कितने रुकू से बनी इसराइल की बातें हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत का दावा करते थे यहूद भी और नसारा भी, और मुसलमान भी आज करते हैं। कल तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत का दावा करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही ये आपके सबसे पहले मुखालिफ बन गए। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मदीना के यहूद को दावत इस्लाम जब दिलवाई तो उनका जवाब वो नहीं था जो कि होना चाहिए था। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के तरफ से ये आयतें नाजिल होती हैं कि ये अपने आप को अक्लमंद ना समझे, हकीकत में ये बेवकूफ़ है। और अगर आप अंदाज पे गौर करें ना, वह मई या रगबो, ये बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू में वो कहते हैं और वो कौन है जो बड़ा चौधरी बनता है, और वो कौन है जिसको बड़ा अपनी अक्लमंदी पे मान है। सवाल अब ज़ाहर लेकिन इनकार है। ऐसी चीज़ को अरबी ज़ुबान में कहते हैं इस्तफहाम बराए इनकार। लफ्ज मुश्किल है इसलिए इसको ना समझे, लेकिन मैं आपको बात करने के अंदाज से समझा सकती हूँ कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपका क्या इरादा है, अब ये एक सवाल है ना कि मैं आपसे इरादा पूछ रही हूँ, और अगर मैं आपको इससे पूछूँ क्या इरादे हैं आपके, तो देखने में ये भी सवाल है ना, लेकिन मेरी टोन आपको बता रही है कि मैं थोड़ा सा तंज का अंदाज रखती हूँ। हाँ, और अगर मैं देखूँ कि कहीं जाना है और बच्चे अभी उठ ही नहीं रहे और अभी तक कोई तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगी क्या इरादे हैं आपके, तो मतलब यह है कि मैं इनकार कर रही हूँ कि आप नहीं जाना चाह रहे तभी नहीं उठ रहे। तो यहाँ ये आखिरी अंदाज़ है कि वह मन कौन है भाई, किसका मामला है इस तरह से, यरगबु रगबत वाला। और अरबी ज़ुबान में रगबत ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में पुट। आप देखिए पुट का मानी क्या है, डालो, पुट इन, पुट ऑफ, मानी बदल जाता है ना। साइन का लफ्ज़ साइन करना, साइन इन साइन आउट, तो प्रपोजिशन के बदलने से मानी बदल जाते हैं ना। साइन इन क्या है, आपने आते हुए जो भी अपने साइन किए, और साइन आउट क्या होता है, जब आप जा रहे थे तो आपने क्या आउट किया। बिल्कुल इसी तरह से रगबा के बाद जब इला या फी, ये दो प्रपोजिशन है अरबी ज़ुबान के, इला टूवर्ड्स के मानों में, फी इन के मानों में, जब ये मानी हो तो मतलब होता है किसी चीज की ख्वाहिश और आरजू रखना, ठीक है, यानी रगबत है मुझे उर्दू में, जैसे हम कहते हैं वही लफ्ज़ है, जैसे अरगबु फि तालीम, मुझे तालीम की बड़ी रगबत है। लेकिन जब रगीबा के बाद अन लग जाए, यानी इस उर्दू में इसको सिला बोलेंगे स्वाद से, और उर्दू में बोलेंगे कि उसके बाद वाला लफ्ज़ या प्रेपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, अन लग जाए, जैसा कि यहाँ है वमई या रगबु अन, यहाँ तक लफ्ज़ है, देखा होगा आपने तर्जमे में भी, मैंने अन साथ पढ़ा था, ठीक है, तो फिर मानी क्या होता है, बेरगबती, बिल्कुल अपोजिट मानी, वही जो पुट इन पुट आउट टेक इन टेक आउट वगैरह, बेरगबती और एराज के मानों में। सही बुखारी और मुस्लिम की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रगीबान सुन्नति फलैसा मिन्नी, वहां भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। अगला लफ्ज देखिए, मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम का तरीका, मिल्लत से यहां मुराद दीन है, क्योंकि तरीका जिंदगी गुजारने का जो होता है उसी को दीन कहते हैं, ठीक है, फर्क है थोड़ा सा बस। एक लफ्ज उर्दू में हम पढ़ते हैं दीन, दीन इस्लाम वट एवर, एक लफ्ज पढ़ते हैं मिल्लत, करीबुल मानी लफ्ज है, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। मसलन जब दीन और मिल्लत का लफ्ज आता है ना, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या किसी नबी की तरफ इसकी निस्बत हो जाती है। मसलन जैसे देखिए मिल्लत इब्राहिम यहां आया ना, तो इब्राहिम की मिल्लत, लेकिन जब दीन का लफ्ज अमूमन आता है तो क्या है, फी दीन इल्लाही, सूरत नसर आयत 2 में हम पढ़ते हैं कि वराइतन ना सयदखुलू न फी दीन इल्लाही अफवाजा, ठीक है। इसी तरह जब नबी अल्लाह तला के दिए हुए अहकामात को लोगों के अंदर जारी करते हैं तो वो निज़ाम मिल्लत कहलाता है। अब ये थोड़ी सी बारीक बातें, नहीं भी समझेंगे तो कोई नहीं, गोया कि आप कह लें कि मिल्लत की असल दीन होती है, बस ये आप कह लें, ये दो चीज़ों के एक दूसरे के अंदर मिला हुआ लफ्ज़ है। सूरत हज आयत 78 में भी आता है मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, यहाँ भी देखिए मिल्लत इब्राहिमी का तस्कर है, तो वहां भी ये कह दिया गया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने इससे पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस कुरान में भी मुस्लिम ही रखा। दीन हमेशा एक ही रहा है, ये भी ज़हन में रखिएगा। सूरत आल इमरान आयत 19 में आता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक हमेशा इस्लाम ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहूदियत और नसरानियत और हिंदू मत और बुद्ध मत वगैरह ये सब खुद साख्ता नाम है, पहले दौर में नहीं थे। अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम दिया वो शुरू दिन से एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और उसका नाम इस्लाम है। दीन की जो आखिरी ईंट थी ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, बात वाज़े, इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से, आखिरी उसकी ईंट क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए भी सूरत मायदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन पूरा कर दिया, जो आगाज हुआ था आदम के वक्त से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें एक बहुत बुनियादी काम रखते थे, लेकिन आज वो तुम्हारा दीन तुम पर पूरा हो गया और तुम्हारे लिए इसको इस्लाम के तौर पे पसंद कर लिया। बहरहाल इल्ला मन सफीहा नफ्सह, मगर वही शख्स सिवाय उसके जिसने खुद को अहमक बना लिया। सफीहा का जो लफ्ज होता है ना, इसका मानी होता है खुद को हल्का करना, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी छोटी बात की है आपने, बड़ी गिरी हुई बात की है, रद्दी और नाकिस साबित करने को कहते हैं, खुद को बेवकूफ बना लेने के मानों में। तो गोया के पता चला कि जिस शख्स में जरा सी भी अकल होगी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौर तरीकों से कभी भी खुद को अलग नहीं कर सकता। वो तरीका क्या, वो अगली आयत में आ रहा है कि इस काल लहु रब्बु अस्लिम काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, यहाँ मुझे और आपको एक क्राइटेरियन और एक मेयार दिया जा रहा है कि देखो तुम हकीकत में अगर अक्लमंद बनना चाहते हो, कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले तरीके लेके आने पड़ेंगे। आज हम मुसलमान जरा सा इस पे गौर करें ना, तो हमें अपना मुकाम खुद ही दिख जाएगा अल्लाह ताला की निगाहों में कि क्या आज हकीकत में हम अक्लमंद हैं, जो जिंदगी के तरीके तौर तरीके मामलात हैं वो अक्लमंदियों वाले हैं या बेवकूफ़ी वाले हैं। बहरहाल अभी इतनी बात करके आगे चलते हैं, क्योंकि आज का पूरा सबक एक ही टॉपिक पे चलता है, तो इसलिए अगर हल्की हल्की वजाहत के साथ बातें चलती गई, आखिर में देखेंगे कि आप पूरी बात को इंशाल्लाह बिल्कुल समझने लग जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। वलकद इस्तफई ना हो फिर दुनिया, हमने तो इनको दुनिया में भी मुंतखब कर लिया था। इस पर रुकिए, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में चुना था। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कैसे चुना था? अब जब ये लफ्ज़ आता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा चुनाव, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होना, पोजीशन होल्डर, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना। हमारे यहाँ अमूमन किसी के चुनने का यही मेयार है ना, मिस वर्ल्ड बना देना। हालांकि आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ शिद्दत के साथ है, वलकद। यहाँ अगर आप लाम और कद को अलग कर लेना, तो ये दो लफ्ज़ शिद्दत के लिए, एग्जेजुरेशन के लिए, तहकीक जोर के लिए। हमने इसको चुना, हम क्यों आया? अल्लाह ने इज्जत के लिए इस्तेमाल किया लफ्ज़ हम, हमने चुन लिया। ये जो लफ्ज़ है ना इस्तफा मुस्तफा, इसी से लफ्ज़ सफिया और सफाई भी है। ये जब सफाई करते हैं ना, वो भी आप चीज़ें चुन ही रहे होते हैं, बेसिकली गंदी और बेकार चीज़ों को अलग करते जाते हैं और इस तरफ ले आते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कैसे चुना? कि उनकी बेपनाह कुर्बानियों को कबूल किया, ये था दुनिया में चुना जाना। अगर आप मादी तौर पे गौर फिक्र करके ज़रा सोचे ना, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई कामयाब शख्सियत नहीं दिखते अपने दौर की। जो मेयार आज हमारे पास है कामयाबी का, आप देखिए कि अच्छा घर, गाड़ी, बच्चे, हमारे यहाँ तो यही कामयाबी है ना। कोई इस तरह का बंदा हमारी नज़र में आ जाए तो हम कहते हैं वो बड़ा कामयाब है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपको ये सब कुछ मिलता? सारी ज़िंदगी तो हिजरतें करते रहे अल्लाह के दीन के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए चुनाव क्या था कि अल्लाह ने उनको अपने काम के लिए चुन लिया। आपको अगर अल्लाह अपने काम के लिए चुन ले, ना आपकी माल हो आपके पास, ना आपके पास माल हो, ना औलाद हो, ना आपका अपना घर हो, ना आपके पास तरह तरह के रंग रौनक वाले कपड़े और खाने हो, लेकिन अल्लाह आसमानों से पुकारता है कि इस्तफई ना हो, अब कौन है हम में से जो चुना जाना चाहता है? कितने लोग हैं जो दुनिया में चुनाव के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, लेकिन अल्लाह चुनाव कहता है कि मैं किसी को लोगों की हिदायत का जरिया बना दूं। पीछे आपने पढ़ा ना, इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा, तुझे इमाम बना रहा हूँ, बेशक मैं तुझे लोगों के अंदर कामयाब करूंगा। तो मेरे और आपके सोचने का ये नुक्ता है, क्या हम इस रास्ते में चुना जाना चाहते हैं? क्या हमारे पास अकल नहीं है कि हम इस अकल को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को 2 + 2 = 4 की बजाय 2 और 2 = 22 कर ले? अकल बहुत है। क्या हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 1 1 घंटे के 8 10 पाउंड कमा के तो अपना घर भरते जाएं? है ना। क्या हमारा जिस्म आराम नहीं चाहता? क्या हमें नरम बिस्तर नहीं बुलाते? क्या हमें अपने आप को दीन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कितनी तरह अपने आप को लाना पड़ता है कि कहीं हमारे चेहरे से ना पता चल जाए कि हम थके हुए हैं या हम नींद पूरी करके नहीं बैठे हुए? क्या ये सब कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन जिस बंदे को इस बात का एहसास हो गया कि मेरा चुनाव अल्लाह ने अपने दीन के लिए किया है, तो वो हकीकत में खुद पे रश करेगा। ये है वो नुक्ता जिसको समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ बात कर रहा है। पीछे आप देखिए रुकू 5 से बात शुरू हुई थी बनी इसराइल की, और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। और असल में जो आज का सबक हम पढ़ रहे हैं ना, अगला सबक कल का दूसरा पारा, ये उसकी बुनियाद है। बिल्कुल आप कह लें कि अगर आज का सबक मुझे और आपको समझ आ गया, तो कल के पारे से जो एक नया आपकी ज़िंदगी का दौर शुरू होने वाला है, अभी आपको तो पता भी नहीं है कि अगला पारा आपके लिए क्या क्या खजाने लेके आ रहा है। फिर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपको चुना है, कहाँ से उठा के इधर चुना लिया, बिस्तरों से निकाल के आपको इधर लाके बिठा दिया। कहाँ अल्लाह ताला आपको अपने कंफर्ट जोन से लाता है, ये अल्लाह की रहमत होती है। तो मुझे तो 2 बातें दुनिया में चुनाव की समझ आती हैं, एक उनकी कुर्बानियों को कबूल करना। ज़रूरी नहीं है कि बंदा कुर्बानी करे और कबूल भी हो जाए। किसकी कबूल होती है? सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तकवा वालों की कुर्बानियां कबूल होती हैं। दुनिया वालों की नज़र में हम कितने ही ज्यादा कुर्बानियों का ढेर बने बैठे हैं, लोग हम पे कभी अफसोस करे, कभी रश करे, कभी हमारे नाम के साथ बड़ी बड़ी बातें बना के बता दें, लेकिन हकीकत ये है कि जिस कुर्बानी को रब कबूल करेगा वही कामयाबी की है। इसलिए तो कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस्समीउल अलीम। तो असल बात कुर्बानियां करना नहीं है, कुर्बानियों की कबूलियत। कितनी कुर्बानियां हुई, और अभी देखे इत्तफाक देखे कि आज ईद कुर्बान के बाद पहला सबक है हमारा। और मैं सोचती हूँ कि चले पहले के दौर में तो लोग कुर्बानियां करके खुश हो जाते थे कि कुर्बानियां कर ली, 6 कर ली, 10 कर ली, किस घर से कितने बकरों की आवाजें आती हैं वो भी ठीक थी। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज हमारे वेस्टर्न मुस्लिम्स में से निकलती जा रही है वो कुर्बानी का रिचुअल भी निकलता जा रहा है। जैसे चेक पे साइन करके किसी और जगह डोनेशन देते हैं, इसी तरह एक चेक साइन कर देते हैं कि हमारी कुर्बानी कहीं दे दी जाए। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें उन बकरों का मिनमनाना और उनका रोना और उनका गोश्त और वो जज्बे, वो जिंदा ईमान पा ही नहीं रहे, इल्ला माशाल्लाह जो भी करते होंगे करते होंगे। तो खुदा के लिए अपनी नस्लों को इन चीज़ों से महरूम ना करें। आपको दूर जाके करना पड़े करे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी थे तो वहां भी शहर से बाहर जगह बनी होती हैं, साथ जाते थे जो भी घर वाले, और जाके देखना वो बकरों को देखना भी एक ईमान देता है। मैंने जब अभी फील किया तो मैंने कहा कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में भाग भाग के जाते थे ना, तो ये बकरे भी जा रहे हैं। वो बच्चे बता रहे कि 4-5 बकरे थे तो एक बकरा था तो वो काबू में नहीं आ रहा था, ऐसे तोड़ तोड़ रहा था। तो वो किसाई ने कहा कि ये कहते हैं मुझे जल्दी कुर्बान करो अल्लाह के रास्ते में। अब वो बकरा क्या सोचता था, लेकिन ये चीजें ईमान देती है ना, तो ये कुर्बानियां कबूल हो जाएं ये दुआ करें। कोई हमारी कुर्बानियों के रास्ते में हराम और हमारे अकायद के अंदर और हमारे दिल के अंदर ऐसे चीजें ना हो कि हमारी ये कुर्बानी हमारे मुंह पे मार दी जाए। आपको पता है पहले दौर में क्या होता था कि जब लोग अल्लाह के रास्ते में कोई चीज कुर्बान करते थे तो उसको खुले मैदान में छोड़ आते थे, फिर आसमान से एक आग आती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी वो आग उस कुर्बानी को खा जाती थी, तो सबको पता चल जाता था मुबारक हो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। और जिसकी कमाई, जिसके नियत इरादे में और तकवा में कमी थी, उसकी कुर्बानी का जानवर वहीं गलता सड़ता रहता, तो उसकी रुसवाई हो जाती थी दुनिया में कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आज अल्लाह ने शायद हमारे पर्दे ढक लिए, वरना फिर असल देखेंगे कि किस किस की कबूल होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बंदे के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है कि वो उसकी नेकियों को कबूल भी कर ले। हर लम्हे ये फिक्र किया करे। अब आपके अंदर ये सोच दिन ब दिन बढ़नी चाहिए कि नमाज तो पढ़ी है, ये बताओ कबूल कितनी हुई है? ये तो किया है, रोजा तो रखा है, ये कबूल कितना हुआ है? इसमें से मुझे कितना मिला, क्या मिला? तो जब आपकी नीयत अच्छी, आपका दिल आपको बताएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपका कबूल हो रहा है। और दूसरी कुर्बानी कि अल्लाह ने अपने काम का बना लिया, इस्तफई ना हो फिर दुनिया, साफ कर लिया। लफ्ज पे भी गौर करें ना, इस्तफई ना हो, चुन लिया सारी अलाइशें गंदगियां इधर उधर की निकाल के उतार के अल्लाह ने उसको पाक किया। क्या दिन ब दिन अल्लाह के रस्तों में आने से आपकी दुनिया की अलाइशें दूर नहीं होती? कितने बोझ और कितने परेशान है। मैंने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ कि सिर्फ एक बाल अगर उनकी पलकों में, भवों में हो ना, तो वो कहीं जाते नहीं, मेरे बाल भड़े में मैं कहीं नहीं जा सकती, अपनी दावतों में जाना है। कहीं जाने से पहले हथियार लेके बैठ जाते हैं कि जी अब जरा एक एक चीज चुन चुन के उतार ले क्योंकि हमने वहां जाना है। आपको परवाह ही नहीं रहेगी, किसी को क्या लगे मेरे हाल से, किसी को मेरे हुलिये से क्या लगे। हाँ, जो काम अल्लाह मुझसे करा रहा है वो बड़ा खूबसूरत है। तो इस तरह से आप अपने आप को चुना हुआ पाएंगे। आप देखिएगा कि रास्ते में आपके को रोड़ा आएगा ना अपने घर में ही चीजों में, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं, मुझे पकड़ो इसको हटा दो। आप अपने जिंद में लाए, किसी को भागना है और रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर जगह चीजें आ रही हैं, तो क्या करेगा? चीजों को हटाता जाएगा ना, क्योंकि वो चीजें उसके पाँव का नाखून तोड़ेंगी या उसकी स्पीड रुकेगी। गैर महसूस तरीके से आप देखेंगे, और आना चाहिए अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं, कि आपकी दुनिया की चीजें कम होती जाएंगी। दुनिया की चीजें इस तरह कम होंगी आपको एहसास नहीं होगी। एक तरफ आपके पास चॉइस है कि आप अपनी दुनिया भर लें, और कपड़े ले लें, और जूते ले लें, और ले लें जो पहले ही बहुत होता है, और दूसरी तरफ छोड़ो क्या करना है, इधर से उधर की चीजें, उधर से फिर इधर की, पकड़ो कोई ऐसी चीज पकड़ लो कि जिससे आपका सदका जारिया बन जाए, जो आपके नामे अमाल को भारी कर दे। और इस तरह से एक बंदा आगे से आगे चलता जाता है, चलता जाता है। तो कह दीजिए कि इब्राहिम का तरीका इखलास का तरीका था, इब्राहिम का तरीका तौहीद का तरीका था, शिर्क से पाक था। जब कोई हुक्म आए उसको मानने का तरीका था। अब उसकी अल्लाह ताला कुछ आपको अमली चीजें दिखाएंगे कि कैसे। वलकद इस्तफई ना हो फिर दुनिया व इन्ना हो फिल आखिरत लमिनस सालेहीन, और आखिरत में वो नेक लोगों में होगा, नेक लोगों के जुमरे में होगा। लामिन, इस पे अरबी के लफ्जों पे गौर करूं तो इतनी ताकीदें हैं, जरूर बस जरूर लामे ताकीद बोलते हैं इस लाम को जो मिन से पहले लगा हुआ है। जरूर ऐसा ही होगा, सालेहीन सालेह का जमा, कि इब्राहिम जरूर नेक लोगों में होंगे। आखिरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक लोगों में कैसे चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया में उनका तरीका नेकी वाला था। क्या क्या आखिरत में इब्राहिम को मिलने वाला है? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अहादीस से हमें जो बातें समझ आती हैं या मिलती हैं, उसमें से चंद बातें आपसे शेयर कर देती हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, कि सबसे पहले कहते हैं कि क़्यामत के दिन लोग बरहना जब उठेंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। क्यों? क्या आपने फरमाया कि जब आग में इनको फेंका गया था, तो उस वक्त उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए गए थे। तो अल्लाह के रास्ते में आपका जो कटता है, जो उतरता है आपसे, अल्लाह आपको दुनिया में भी दे देता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला लिबास देंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेराज के सफर में भी अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि बिल्कुल ऊपर सातवें आसमान पे थे। और नबियों का आसमानों पे मुख्तलिफ पे होना उनके दर्जों की बात है। पीछे से शुरू करें तो सातवां आसमान अर्शे इलाही के बिल्कुल करीब है। तो अर्शे इलाही के करीब ये है अल्लाह ताला की इस्तफई, ना खौफ दुनिया, और आखरत में वो सालेहीन में से होंगे, अच्छे तरीकों में से होंगे। फिर इसी तरह आखरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो भी होगा, लेकिन एक रिवायत तो हमें मिलती है कि वो बच्चे जो एबॉर्ट हो जाते हैं, कच्चे झड़े हुए बच्चे बोलते हैं ना, जो खुद ब खुद माँ के पेट से झड़ जाते हैं, हदीस में आता है कि वो जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिए जाते हैं। हमने तो पता नहीं उनका क्या मत मारनी थी दुनिया में, बिगाड़ बिगुड़ के उनके बुरे हालात करने थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको आखरत में देता है। तो याद रखिए, सिर्फ दुनिया ही की कामयाबियां कामयाबियां नहीं होती, कि आपको यहाँ क्या मिला, आपको इससे इधर क्या मिलेगा, इससे क्या आपका फायदा हो रहा है, इससे आपका क्या होगा। इन चीजों से हट के ये देखिए कि आगे चले। अब इस पूरी आयत में आप देखिए तो पता क्या चलता है, कि जो बंदा अपनी जिंदगी में कोई नेकी करता है, अल्लाह उसकी कदर बड़ी करता है। और यहां से ये भी पता चल जाता है कि जहालत और अकलमंदी बराबर नहीं है। इस्लाम तो सलामती का रास्ता है, सबमिशन का रास्ता है। जो लोग अल्लाह की बात इब्राहिम की तरह मानते हैं और जो नहीं मानते, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। और यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जो दुनिया में इज्जत चाहता है और आखरत में सालेहीन के गिरोह में शामिल होना चाहता है, तो उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होना पड़ेगा।